आदि से संबंधित 26 प्रश्नोत्तर हैं। जैन श्रमणाचार का बहुत ही सटीक स्वरूप इसमें व्यक्त किया गया। प्रश्न पहला है, आचार्य परमिष्टि किसे कहते हैं? जो मुनि पंचाचार का पालन स्वयं करते हैं एवं अन्य साधुओं से करवाते हैं तथा जो संघ के नायक होते हैं, दीक्षा आदि देते हैं, वे आचार्य परमिष्टि कहलाते हैं। पंच परमिष्टियों में अरहंत भगवान के बाद आचार्य परमिष्टि का स्थान है। जैसे अरहंत भगवान, तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद तीर्थ की प्रवृत्ति उनके माध्यम से होती है, उसी प्रकार तीर्थ की प्रवर्तना जब अरहंत का अभाव होता है, उस अभाव की पूर्ति में आचार्य परमिष्टि कार्यरत रहते हैं। पंचम काल में अरहंत भगवान तो है नहीं, और उपाध्याय परमिष्टि भी मूल गुणों की दृष्टिकोण से देखें तो बन नहीं सकते। साधु परमिष्टि और आचार्य परमिष्टि ये मूल गुणों की अपेक्षा से, परिपूर्णता की अपेक्षा से बन सकते हैं। तो आचार्य परमिष्टि इस युग में धर्म तीर्थ के प्रवर्तक, मुख्य प्रवर्तक कहलाते हैं। इसके बाद साधु परमिष्टि जो उनके उपदेश के अनुसार दीक्षा लेकर त्याग और तपस्या में लीन रहते हैं, वे साधु परमिष्टि भी तीर्थ के प्रवर्तक हैं। तीर्थ का अर्थ होता है सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र स्वरूप जो मोक्ष मार्ग है, इसको तीर्थ कहते हैं। इस तीर्थ की प्रवर्तना करने का तात्पर्य इस तीर्थ को धारण करना, दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण करके निर्दोष पालन करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करना, ये तीर्थ का पालन हुआ, यही तीर्थ का प्रवर्तन भी हुआ। जब हम रत्नत्रय से युक्त रहेंगे तो भव्य जीव भी इस रत्नत्रय के स्वरूप को देखकर उनको जो कुछ शिक्षा मिलेगी या शिक्षा प्राप्त होती है, वे भी अपनी भावना को जगा लेते। स्वच्छ दर्पण को देखने से क्या याद आता है? मैं अपने मुख को उसमें देख लूं। दर्पण को देखकर अपने मुख की याद आती है कि उसमें मैं देखूं कि कैसा हूं। जब दर्पण के सामने खड़े होकर दर्पण में देखते हैं तो दर्पण दिखना बंद हो जाता है और उसमें हम ही दिखने लगते। हम दर्पण को भूल जाते हैं और हमारे चेहरे में हम डूब जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पंच परमिष्टि दर्पणवत कहलाते हैं। पंच परमिष्टियों के सामने जाने से हमको क्या शिक्षा मिलती है, उसका चिंतन हमारे मन में प्रारंभ होता है। उनको देख करके मुझे भी ऐसे पाप रहित प्रवृत्ति को धारण करना चाहिए, पाप रहित होना चाहिए, आत्मा का कल्याण करना चाहिए, इस प्रकार के परिणाम होने लगते हैं। इन परिणामों को ही कहा है दर्पण को देखकर दर्पण को भूल गए और अपने में डूब गए। अपने में डूबने के लिए ही दर्पण का सहारा आवश्यक होता है, अपने को पहचानने के लिए ही दर्पण की आवश्यकता होती है, और वह आवश्यकता की पूर्ति जहाँ हो गई वहाँ पर अपना कल्याण प्रारंभ हो गया। प्रत्येक घर में दर्पण है, किस घर में दर्पण नहीं, किस घर में दर्पण नहीं? दर्पण तो सब घर में है, मंदिर में भी। हाँ देखो, मंदिर में डबल दर्पण है, एक प्रतिमा और एक दर्पण, उसको क्यों रखते हैं मंदिर में? भगवान को देखने के लिए, अपने को देखने के लिए और अपने को सजाने के लिए। क्या सजाएं? हम अपने गंध आदि सुगंधित पदार्थों से सजा करके भगवान की पूजा में हम लीन हो जाएं, इस उद्देश्य से वहां लगाया जाता है। अगर अपने को सजाना न हो तो दर्पण की भी जरूरत नहीं है। हम मंदिर जाते हैं तो आत्मा को सजाने के लिए जाते हैं, शरीर को नहीं। शरीर गौण होता है, शरीर पूजा करने में हमारे लिए बाह्य सहयोग मात्र है। इसके सहयोग से हमें भगवान की पूजा करते करते आत्म गुणों की पूजा करना है, आराधना करना है, उनकी साधना करना है। उनकी साधना करने हेतु ही शरीर मिला है और हम आर्यखंड वाले हैं। आर्य हमारा नाम, अगर म्लेच्छ होता तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होती। आर्य का तात्पर्य होता है जन्म लेने के पश्चात इस शरीर के माध्यम से जो धर्म की साधना करता है। शरीर भौतिक है, धर्म परमार्थ है। भौतिक शरीर को महत्व न देते हुए, भौतिक शरीर के सुखों के तरफ ध्यान न देते हुए, जो आत्म सुख की तरफ ध्यान ले जाकर आत्म सुख की अनुभूति के लिए प्रयासरत रहता है, उसको क्या बोलते हैं? आर्य। उन्हीं का नाम आर्य। यह आत्म साधना आर्यखंड में ही संभव है। अन्यत्र कहीं संभव है क्या? म्लेच्छ खंड में नहीं है, स्वर्ग में नहीं है, त्रिरंच गति में नहीं है, नरक में नहीं है। इसलिए मनुष्य पर्याय को कीमत आती है। मनुष्य पर्याय रत्न के समान, तीन लोक का यह रत्न है। इस रत्न को विषयों में ढकेलना नहीं, विषयों में पटकना नहीं। विषय रूपी समुद्र में यह रत्न गिर गया तो वापस मिलने वाला नहीं है। इस रत्न की सुरक्षा करना है। कैसे सुरक्षा करना है यही आचार्य परमेष्टि बताते हैं। यह आर्यखंड है, इंद्रिय विषयों को त्याग करके अपनी आत्म साधना करो, ये उपदेश आचार्य परमेष्टि देते हैं। आचार्य किसे कहते हैं? जो मुनि पंचाचार का पालन स्वयं करते हैं और अन्य साधुओं से पालन करवाते हैं। अब पंचाचार क्या कहलाता है? पांच आचार: दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, वीर्याचार, चारित्राचार, ये पांच आचार। ये पांच आचार पर पालन करने के लिए मनुष्य भव मिला है। सम्यक दर्शन धारण करने के लिए, सम्यक ज्ञान अर्जन करने के लिए, संयम का पालन करने के लिए, शक्ति को लगा करके यह मोक्ष आत्म कल्याण हो, इस सद्भावना से आगे बढ़ने के लिए यह मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई। पंचाचार पालन करने के लिए, पंचाचार को कन्नड़ में पंच को क्या कहते हैं? ऐद। ऐद, ऐद पालन माड़ो बिट्टा, ऐद पालन माड़ोद बिट्टा, ऐदे आगे तिरगाड़कद ये आत्मा जीवा पंचाचार का पालन करने के लिए मिला था, उसको सब त्याग दिया और भटक रहा है। ऐदी आगे ऐदी हंग आदंद्र सम्यक दर्शन पालन माड़ल, मिथ्यात्व पालन माड़ ऐदी आद, अकड़ भी ऐद आगोदा। दर्शनाचार ज्ञानाचार का पालन करना छोड़ दिया, मिथ्या ज्ञानी बन गए। चारित्राचार पालन करना छोड़ दिया, असंयम का पालन करने लगे। तपाचार, तपना चाहिए था, यहां पर राग द्वेष से तप रहा है। इच्छाओं को छोड़कर, इच्छा का निरोध करके आत्मकल्याण हेतु तपस्या करनी चाहिए थी, और इच्छावान होकर रात दिन हाय हाय त्राय त्राय, हाय हाय त्राय त्राय, विकल्प संकल्प विकल्पों में तपता है क्या? नहीं, आत्मा तपता है। इसको राग द्वेष के माध्यम से भी तपाया जा सकता है, और राग द्वेष को छोड़कर आत्मा में भी डूब करके तपाया जा सकता है। राग द्वेष को छोड़कर यदि हम आत्मा में डूब जाएंगे, तपेंगे, तो कर्मों का नाश होगा और जीव को निर्वाण की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। और ऐसा न करते हुए पंचाचार को छोड़कर वो पांच धारण करेंगे और ऐदी बनकर भटकते फिरते रहेंगे, तो वहां पर भी तपन है राग द्वेष के कारण से। राग, यह राग है राग, आग दहे सदा ताते समामृत से, ये छेड़ाला में कहा है ना, यह राग आग के समान है, जीव को जलाता है, दग्ध करता है। राग द्वेष भी विकल्प होते हैं, शांति नहीं रहती, अशांत अशांत रहता है, उससे भी तपता है। ऐसा तपने से कर्मों का आश्रय और बंद होगा, और उसका अनिष्ट फल मिलेगा जो कि दुख माना जाता है। आश्रय का फल क्या है? दुख। बंद का क्या फल है? दुख। संवर का क्या फल है? सुख। निर्जरा का क्या फल है? सुख। तो संवर और निर्जरा करने के लिए पंचाचार चाहिए, और आश्रय और बंद करने के लिए पंचाचार का पंचायत में भी नहीं पढ़ना चाहिए, तो ऑटोमेटिक आश्रय और बंद शुरू हो जाएगा। पंच आयत को पंचायत कहा, आयत यानी आयतन, आयतन पांच होते, आर्तु पंचाचार, पंचाचार ये आत्मा के आयतन, पांच प्रकार के जो आयत आयत ये है ना, वृत्त आचार है ना, ये पांच प्रकार के आचार ही आयतन है आत्मा के लिए। ये आत्म आयतन है, बाहर के तो छह हैं वो, लेकिन अंतरंग के सच्चे आयतन तो ये पांच है। इसके पंचायत में आना चाहिए और बाहर का पंचायत छोड़ना चाहिए। पांच का छोड़ो, पांच को ग्रहण करो, तो आत्मा का कल्याण होगा। कैसे होते हैं आचार्य परमिष्टि? पंचाचार का स्वयं पालन करते हैं और अन्यों को पालन कराते हैं, अन्य साधुओं को। दर्शनाचार का क्या अर्थ है आगे बताएंगे, पांच आचार्यों का स्वरूप आएगा। और क्या करते हैं आचार्य परमिष्टि? संघ के जो नायक होते हैं, संघ के नायक, नायक यानी नेता, संघ के नेता नायक, संघ को संभालने वाले, दीक्षा शिक्षा आदि देते हैं। दीक्षा, दीक्षा यानी दीक्षा, रत्नत्रय को दीक्षा कहा है, और रत्नत्रय को धारण करने के लिए जीव को 24 प्रकार के परिग्रहों का त्याग करना पड़ता है। जहाँ 24 प्रकार के परिग्रहों का त्याग होता है, वहीं पर दीक्षा होती है। दीक्षा का अर्थ 24 का त्याग, 24 परिग्रह उनका त्याग। आचार्य परमिष्टि के कितने मूल गुण होते हैं? 36 मूल गुण होते, आचार्य परमिष्टि के 36 मूल गुण होते हैं। वे निम्न हैं: 12 तप, 10 धर्म, 5 आचार, 6 आवश्यक कर्तव्य एवं 3 गुप्ति। द्वादश तपदश धर्मजुत पाले पंचाचार षड आवश्यक गुप्ति त्रय आचार रजगुणसार। इसमें इस पद्य में 36 मूल गुणों का उल्लेख है। तप कितने प्रकार के होते हैं, तप किसे कहते हैं और तप के भेद कितने हैं? 12 हैं। तप किसको कहना चाहिए? कर्म क्षय के लिए जो तपा जाता है उसे तप कहते हैं। तप के 2 भेद हैं, बाह्य तप और अंतरंग तप। कितने प्रकार के? अंतरंग और बहिरंग की अपेक्षा से 12 प्रकार के तप हैं, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग। तप की परिभाषा को ध्यान में रखना चाहिए। क्या कहा? कर्म क्षय के लिए जो तपा जाता है उसको तप कहते। देखो ध्यान में रखना है, बहिरंग तप कौन कौन से हैं? अनशन, ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, व्यक्त से आसन, काय क्लिश, ये बहिरंग तप हैं। और ये तप तपने के लिए हैं। फिर उद्देश्य क्या होना चाहिए? कर्म क्षय के लिए तपना चाहिए। और यदि हमारा बहिरंग तप या अंतरंग तप कर्म क्षय के लिए ना हो तो वह तप की कोटि में नहीं आएगा। वैसा तप धारण करना ही तप है, तप ही तप। इच्छा सहित, यानी इच्छाएं तो दूर नहीं हुई, और इच्छा दूर न करते हुए बहिरंग सब कुछ कर रहे हैं तो लक्ष्य या उद्देश्य भिन्न हो गया। किस तरफ का हो गया? आत्मा तो गौण हो गया, मोक्ष मार्ग, कर्म निर्जरा, परमार्थ की सिद्धि, आत्म कल्याण, ये दूर रह गया। और तप करने का लक्ष्य उद्देश्य मात्र बहिरंग दृष्टि रह गई, ये तप की कोटि में नहीं आता, ये सम्यक तप नहीं है। सम्यक तप का अर्थ होता है आत्म कल्याण के उद्देश्य से तपे सम्यक प्रकार से, उसी का नाम तप है। यहां 2 भेद बताया, उसके अर्थ बताते हैं। बाह्य तप किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं? जो बाह्य द्रव्य के आलंबन से होता है और दूसरों के देखने में भी आता है तथा मिथ्या दृष्टि जन भी जिसे कर लेते हैं उसे बाह्य तप कहते हैं। बाह्य तपों को धारण करना आसान है, यानी ज्ञानी जीव भी धारण करते हैं और अज्ञानी जीव भी धारण करते हैं, किंतु अंतरंग तप को धारण करना केवल ज्ञानी जीवों को ही संभव है, अज्ञानी जीवों को वह संभव नहीं है। अंतरंग तप परमार्थ रूप होते हैं, बहिरंग तप परमार्थ रूप भी होते हैं, और योग्य तरह से सम्यक प्रकार से हमने धारण नहीं किया तो भौतिक भी बन करके रह सकते हैं बाह्य तप। बाह्य, वो बाह्य तप 6 प्रकार के, ये क्या कहा यहाँ? बाह्य द्रव्य के आलंबन से होता है, बाह्य तप जो होते हैं बाह्य द्रव्य के आलंबन से। जैसे पहला तप कौन सा है? अनशन। अनशन का तात्पर्य क्या है? अशन के बिना रहना अनशन है। अशन यानी आहार, चतुर्विध आहार, 4 प्रकार का आहार। कौन कौन सा? खाद्य, स्वाद्य, लेय और पेय। लेय और पेय, इस प्रकार के जो 4 प्रकार के ये आहार हैं इनसे दूर रहना, यानी इनका त्याग करना, ये अनशन तप है। अब ये अनशन तप दूसरे को दिखाई भी देता है, यह व्यक्ति आज भोजन नहीं कर रहा है, उपवास है इसका, दूसरे को भी दिखाई देता है कि नहीं? लेकिन अंतरंग तब दिखाई नहीं देते, अंतरंग में क्या चल रहा है ये बता ही नहीं सकते, अंतरंग तप अलग है। बहिरंग तप दूसरों को दिखाई देता है और ये दूसरे द्रव्य के आलंबन से किए जाते हैं, यानी भोजन ये दूसरा द्रव्य हुआ और उसका त्याग, त्याग करने वाले तो हम हो गए, तो हमने भोजन को त्याग किया तो इसको त्याग करने से ये तप हुआ। तो बहिरंग द्रव्य का आलंबन लेकर के इस तप को किया जाता है, इसलिए बाह्य तप कहा। अनशन क्या लिखा है देखो, ये ख्याति पूजा लाभ आदि लौकिक फल की इच्छा के बिना, संयम की सिद्धि, राग का त्याग, कर्मों का नाश एवं ध्यान स्वाध्याय की सिद्धि के लिए चारों प्रकार के भोजन का त्याग करना अनशन तप है। पथ्य भी बता दिया, ये तप करने के लिए बहिरंग तप करना हो तो पथ्य भी बता रहे हैं। क्या अपेक्षा नहीं रखना, ख्याति लाभ पूजा से बच करके करना। किस उद्देश्य से करना, तो कर्म निर्जरा के लिए करना, आत्म कल्याण के लिए करना, मोक्ष सिद्धि के लिए करना, तो इसको सम्यक बाह्य तप कहते हैं। जो ख्याति लाभ पूजा से रहित होता है उनके पास नियम से सम्यक दर्शन तो होता ही है, सम्यक दृष्टि ही इस तप को कर सकता है, अनशन तप को। मिथ्या दृष्टि जीव इस तप को नहीं कर सकते क्योंकि अज्ञान, मिथ्या दृष्टि जीव क्योंकि सदा ही ख्याति लाभ पूजा आदि में रहते हैं, इसलिए उनको करना संभव भी नहीं। सम्यक दृष्टि जीव इसलिए कर सकता है सहज रूप से कि उसकी दृष्टि तो हमेशा परमार्थ में ही होती है, परमार्थ दृष्टि होती है, परमार्थ दृष्टि जिसके पास है वो सम्यक दृष्टि ही होता है, और सम्यक दृष्टि होता है इसलिए सम्यक तप कहलाता है। सम्यक तो पूर्वक अनशन आदि बाह्य तपों को तपना, ये सम्यक तप की परिभाषा है। दूसरा अमोदर, ऊनोदर इसका दूसरा नाम है, ऊन उदर, ऊन कहलाता है कम, उदर कहलाता है पेट, कम पेट खाना, कम पेट, पेट में कम खाना, पेट में कम खाना, ये ऊन उदर है। अवमोदर उदर संबंधी औदर्य, औदार्य, औदर्य शब्द बनता है। अव यह उपसर्ग लगा हुआ उपसर्ग शब्द है, अव 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 मौधर्य, उपर्युक्त कारणों से अल्प आहार ग्रहण करना अवमोदर्य तप है। उपर्युक्त कारणों से, किन कारणों से, वही कारण कर्मों का नाश, ध्यान स्वाध्याय आदि की सिद्धि, इसको ध्यान में रखते हुए कम खाना, कम खाने से ध्यान की सिद्धि होती है, कम खाने से स्वाध्याय अच्छी तरह से होता है, कम खाने से प्रमाद नहीं आता, ज्यादा खाने से प्रमाद आता है, स्वाध्याय करने नहीं देता, ध्यान करने नहीं देता, ऐसा ज्यादा खाने से समीचीन चर्या नहीं बन पाती, इसलिए भोजन कम खाने का नाम अवमोदर तप है। इसको जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक अलग अलग बताया है। उत्कृष्ट अवमोदर तप कैसा होता है, तो कहते हैं एक ग्रास ले लिया और भोजन समाप्त कर दिया, भोजन बंद, एक ग्रास ले लिया भोजन बंद कर दिया, ये उत्कृष्ट है। हाँ? पानी तो पियेंगे ना, ऐसे कैसे? मुसरी बाई ले हंगा बरोधा एक ग्रास खाना, एक ग्रास पानी पीना हो गया, एक ग्रास ही माना जाएगा वो अहमोदरी। तो ये उत्कृष्ट हो गया। अब एक एक ग्रास बढ़ाते हुए वो सब मध्यम, बढ़ाते 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 चले जाइए, आपको जितनी भूख है, जितना डेली आप खाते हैं, खाते थे, उसमें से अंतिम एक ग्रास को छोड़ना, ये जघन्य अवमोदर तप है। और बीच के जो विकल्प हैं वो सभी मध्यम विकल्प हैं। इस प्रकार अवमोदर तप का लक्षण बताया है। तो ऐसा क्यों करते हैं? कम खाने से क्या मतलब है? कम खाने से प्रत्येक ग्रास के लिए टैक्स देना पड़ता है। कैसा टैक्स? इच्छा का निरोध। ये ग्रास ले रहे हैं, इसमें कोई इच्छा नहीं, एक ग्रास ले लिया, आगे की बिल्कुल इच्छा नहीं है। अवमोदर में निरंतर इच्छा का निरोध होता चला जाता है। अनशन में पूर्ण इच्छा का निरोध जरूर होता है, लेकिन वहां पर प्रयत्नशील कुछ भी नहीं होना पड़ता, एक साथ प्रयत्न कर लेता है, चारों प्रकार का आहार त्याग कर देता है, किंतु आत्मा की इच्छाओं पर हैमरिंग नहीं होता। और खाते समय जब हम अवमोदर तप करते हैं तो पहले ग्रास में ये नहीं लूं ये इच्छा रहती है, आगे का नहीं लेना है, ये एक ही लेना है, इस प्रकार सावधान रहता है। इच्छा के निरोध के लिए, कर्म के निर्जरा के लिए इस प्रकार निरंतर इच्छा का निरोध चलता है। इस अपेक्षा से अनशन से भी ज्यादा कर्म की निर्जरा अवमोदर्श होती है, और अवमोदर्श कर्म ज्यादा निर्जरा वृत्ति परिसंख्यान से होती है, उससे ज्यादा निर्जरा रस परित्याग में होती है, उससे ज्यादा निर्जरा विविक्त शयासन में होती है, उससे ज्यादा निर्जरा काय क्लेश में होती है। इस प्रकार उत्तरोत्तर कर्म की निर्जरा का यह ऐसा इस प्रकार गणित क्यों बताया? बताया इसलिए कि उत्तरोत्तर इच्छाओं का निरोध अच्छी तरह से होता है, इसलिए कर्म की निर्जरा भी अच्छी तरह से होती है। उपवास में भी होता है, लेकिन उपवास एक बार का ही संकल्प माना जाता है, उसमें बार बार इच्छा का निरोध के प्रति लक्ष्य ध्यान नहीं रहता, एक बार कर लिया संकल्प हो गया। जैसे यह है ना, हाथ में चाकू है और सांप ने काट खा लिया है अंगुली को, सांप ने डस लिया, फिर व्यक्ति क्या सोचता है? अब लेट हो जाएगा तो मर जाऊंगा, लेट होने से पहले इस अंगुली को या तो काट डालना चाहिए या तो छीलना चाहिए। काटने में और छीलने में अंतर है। यदि बचने की संभावना नहीं होती और अभी 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 ताजा काट खाया है तो कुल्हाड़ी लेकर के रख करके एक काट ही देता है, एक साथ कटने में अंगुली को इतना दर्द नहीं होता, एक झटके में कट होकर के गिर जाता है, लेकिन छीलने में बार बार दर्द होता है, ऐसा ऐसा कर रहे हैं तो दर्द होता है। तो इच्छा का ऑपरेशन ऐसा होता है। उपवास एक साथ काट डालने का विधान है एक झटके में उपवास हो गया, उनोदर वो छीलने का काम है, प्रति समय इच्छा का ऑपरेशन कर रहा है, यानी यहां प्रैक्टिकल हो रहा है। भोजन के साथ इच्छा का संघर्षण पुरुषार्थ चल रहा है, एक एक इच्छा को बाहर निकाल करके फेंक रहा है, ये कोई ऐसा शरीर को वो करने का साधन नहीं, माध्यम नहीं, क्या करने का शरीर है इसको भोजन नहीं देना है, उसके साथ कोई खिलवाड़ थोड़ी है, शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं किंतु इच्छा के साथ खिलवाड़ हम कर रहे हैं। है भोजन शरीर के लिए एक साधन, किंतु इस भोजन के प्रति जो ममत्व भाव रहता है उस ममत्व भाव को घटाने के लिए ये सब संघर्ष होता है। हमारा संघर्ष शरीर के साथ क्या, इच्छाओं के साथ, इच्छाओं के साथ, इच्छाओं को निरोध करते हुए भोजन करना ये उत्कृष्ट तप है। इसलिए उत्तरोत्तर इनमें निर्जरा अधिक बताई है, पर ये कठिन है। उत्तरोत्तर अनशन से ज्यादा कठिन अवमोदर है, क्योंकि उसके पीछे एक विधि है, उस विधि को अनुसरण करते हुए करना कठिन पड़ता है, इसलिए इसमें ज्यादा निर्जरा बताई है। ऐसा कोई नियम थोड़ी है, दिन भर झूठा ही रख सकते हैं, और नहीं चाहो तो कर्म निर्जरा चाहते हैं तो एक बार भी खा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा दो बार खा सकते हैं, तीन बार भी खा सकते हैं, इससे ज्यादा खाए तो एक बार खाने वाला क्या बोलते हैं ना, वो एक बार खाने वाला योगी, दो बार खाने वाला भोगी, तीन बार खाने वाला रोगी, और बार बार खाने वाला हतकोंड होगी, वो बचेगा नहीं जीवित, उनको हतकोंड होगी, होगी बीड़ी स्मशान दौड़। तो कितनी बार झूठा करना देख लो, इसमें ये गणित है, देखो दो बार ठीक है। संसारी आदमी को ही भोगी कहा ना, इसलिए दो बार आवश्यक है, और यदि योगी के बनना चाहते हैं तो एक बार से ज्यादा नहीं खाना, और रोगी बनना हो तो तीन बार खाना, और स्मशान जाना हो खाकर बार बार खाना। वृत्ति परिसंख्यान तप तीसरा है, बाह्य तप है। आहार को निकलते समय मुनि की अपेक्षा से यहाँ पर कहा गया है, आचार्य परमिष्टि के ये बहिरंग मूल गुण हैं। आहार को निकलते समय कुछ नियम लेकर निकलना, यदि निकलना कि यदि ऐसा होगा तो आहार ग्रहण करूंगा, यह वृत्ति परिसंख्यान तप है। यदि ऐसा होगा तो आहार ग्रहण करूंगा, यदि ऐसा नहीं होगा तो आहार ग्रहण नहीं करूंगा। आहार लेने के लिए तो जा रहे हैं लेकिन शर्त रख करके जा रहे हैं। शर्त क्यों रख रहे हैं, दूसरे को परेशान करने के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं। वहां पर भी प्रतिक्षण कदम कदम इच्छा का निरोध है, आहार में ममता नहीं है। इस ममता को डिपॉजिट में रख करके मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई भरोसा नहीं, इसको किनारा करके, ममता को किनारा करके आहार लेने के लिए जाते हैं और नियम लेकर के जाते हैं। कैसा, तो आज मैं आहार के लिए निकल रहा हूं और मैं चौके में जाऊंगा और जब थाली बताएंगे श्रावक तो उस थाली में इतने वस्तु रहेंगे और ऐसा ऐसा रहेंगे, उसके बीच में ये वस्तु रहेगी, आसपास में ये वस्तु हो और बीच में ये वस्तु हो। देखो वृत्ति परिसंख्यान केवल गली में जब आप खड़े रहते हैं तत्संबंध ही लिया जाता, ऐसा कोई नियम नहीं है। अंदर जाने के बाद भी वृत्ति परिसंख्यान तब किया जाता है। कैसा? थाली बताते समय बीच में अगर रोटी के ग्रास रखे हों और आसपास में अन्य वस्तु रखे हों तो भोजन आज लिया जाएगा अन्यथा नहीं लिया जाएगा, इस प्रकार का भी संकल्प अटपटा संकल्प ले सकते। क्यों ऐसा करते हैं? इच्छाओं का निरोध करने के लिए, ममता पर विजय प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं। आचार्य परमेष्ठी को ये तप मूल गुण कहलाते हैं और साधु परमेष्ठी को ये उत्तर गुण कहलाते हैं। मूल गुण का पालन नियम रूप से किया जाता है। जो मूल होते हैं वो फाउंडेशन कहलाते हैं और जो उत्तर होते हैं उस मूल गुण के आधार से वो विकसित होते हैं। यानी मूल उत्तर गुणों के विकास के लिए मूल गुणों का उल्लेख हुआ है। उत्तर गुणों के विकास के लिए मूल गुण का व्याख्यान हुआ है। मूल गुणों की रक्षा करते करते उत्तर गुणों का विकास करे, इस हेतु से मूल को मूल कहा, उत्तर को उत्तर कहा। जैसे नारियल का पेड़ लगाना है, पेड़ नहीं लगाया जाता, क्या लगाया जाता है? नारियल ही। आप मूल को ले जाते, बीज वह मूल है, उसको गाड़ देते हैं और उसको गाड़ने से ही उत्तर उसमें से फूटता है। मूल को क्यों गाड़ रहे हैं? पेड़ के विकास के लिए। पेड़ कब आएगा? जब मूल आएगा तो ही पेड़ आएगा, मूल के बिना तो पेड़ विकसित होता नहीं है। मूल गुण बीज की तरह होते और उत्तर गुण वृक्ष फल फूल शाखा की तरह होते, स्कंद की तरह होते। तो विकास किसका करना है? नहीं, विकास तो उत्तर गुणों को करना है। मूल गुण का क्या करना है? मूल गुण को तो केवल सुरक्षित रखना है। मूल गुण की रक्षा और उत्तर गुणों में विकास, यह मोक्ष मार्ग में भव्य जीवों को कल्याणकारी होता है। वृत्ति परिसंख्यान यह तप आचार्य परमेष्ठी को मूल गुण है और उत्तर गुण साधु परमेष्ठी के लिए उत्तर गुण हो गए। और साधु परमेष्ठी के मूल गुण कितने? 28। आचार्य परमेष्ठी के मूल गुण कितने? 36। उन 36 में ये 12 प्रकार के तप भी आ गए। देखो क्या क्या है, 12 तप, 10 धर्म, 22, पंचाचार, 3 गुप्ती, 6 आवश्यक, ये 5 हो गए, 5 स्थान पर। 12, 10, 6, 5, 3 संख्या को छोटी बनाते जाओ, याद रह जाएगा। 12 तप, 10 धर्म, 6 आवश्यक, 5 पंचाचार और 3 गुप्ती, ये 36 मूल गुण आचार्य परमेष्ठी के होते। मुनि के मूल गुण 5 महाव्रत, 5 समिति, गुप्ती नहीं है, मुनि को गुप्ती नहीं, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 5 5 3 बार है, 5 महाव्रत, 5 समिति, पांच इंद्रिय विजय, छह आवश्यक और सात शेष गुण, ये भी पांच स्थान पर हैं। आचार्य परमेष्टि के भी मूल गुण पांच स्थान पर और साधु परमेष्टि के मूल गुण भी पांच स्थान पर, पांच 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 छ सात, पांच तीन बार करना, पांच 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 छ और पांच सात सात, इतना याद रह जाएगा, रह जाएगा याद। इतने बड़े मोबाइल के नंबर ध्यान रखते हैं, इसको भी जरा रखो ना। पांच 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 छ और सात, ये पांच क्या महाव्रत, और पांच क्या पांच समिति, और पांच इंद्रिय विजय, और छ आवश्यक, और सात शेष गुण, ये मुनि के मूल गुण हैं। उपाध्याय परमिष्टि के मूल गुण पंचवीस है, उसमें आचरण संबंधित कुछ भी नहीं है। 25, 11 अंग मूल गुण चला गया तो उत्तर गुण का कुछ काम ही नहीं चल सकता। स्वाध्याय का मूल गुण करंट गया तो यहाँ सब ठप। उसी प्रकार मुनि के जीवन में या आचार्य परमेष्टि के जीवन में जो मूल गुण होते हैं वो नहीं है और उत्तर गुण हैं तो सभी ठप है, करंट नहीं है। वायर है, उसके अंदर तार भी है, लेकिन क्या नहीं, करंट नहीं। यहाँ तो तीन चाहिए, ऊपर का वायर, अंदर का तार, और तार के अंदर करंट। और यदि करंट एक सेकंड के लिए भी चला जाता है तो वायर बेकार, उतने समय के लिए बेकार तो है, वो दोनों मिलकर के कुछ भी नहीं कर सकते, तीन मिलकर के ही कर सकते हैं। जैसे मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों मिलने के बाद ही केवल ज्ञान होता है, दो से नहीं होता, एक से नहीं होता, और ये तीनों रह करके सम्यक रूप से नहीं रहते तो भी नहीं होता। इसमें करंट है, इस बल्ब तक वायर आया हुआ है और उस वायर में करंट बह रहा है, वो प्रवाहित है। यदि करंट है तो बल्ब लगेगा, और करंट ना हो करके आप वायर पकड़े हैं और अग्नि में पकड़े और बल्ब को जलाना चाहते हैं तो आग को वायर में पकड़ने से क्या करंट बह जाएगा? वो भी हीट है और करंट भी हीट है। बल्ब किससे जलेगा? करंट से ही जलेगा। तो करंट क्या चीज है? वो चारित्र। सम्यक दर्शन क्या चीज है? कोटिंग। और तार ज्ञान है, और उसके भीतर बहने वाला करंट चारित्र है। ये तीनों मिलकर के बल्ब तक जाएं तो केवल ज्ञान का प्रकाश फैल जाएगा। अग्नि में वायर पकड़ेंगे तो बहने वाला नहीं है। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इन तीनों से हम केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि हम आग में पकड़े हैं वायर को, उसमें करंट नहीं दे रहे। कैसा है मोक्ष मार्ग? ऐसा है जिसमें जो होना चाहिए वही हो तो बल्ब लगे, वह नहीं हो तो बल्ब लग नहीं सकता। रस परित्याग, चौथा इंद्रियों को जीतने के लिए घी, दूध, दही, तेल, मीठा, नमक, देखो षड्रस का नाम आ गया यहाँ। एक प्रश्न आया था कि शाकाहार मांसाहार का, महाराज दूध दही आदि ये शाकाहार हैं क्या मांसाहार हैं? अगर मांसाहार होता तो रस, इसको रस क्यों कहते, मांस कहते? दूध दही आदि ये वस्तु कहाँ से आए, ये प्रश्न अलग है। प्राणिज है ये, प्राणिज वस्तु मांस है या मांस का अंश है या रक्त है, रक्त का अंश है या प्राणी का कोई अंगोपांग का सप्त धातुओं में से कोई धातु है क्या? नहीं है। सप्त धातुओं में दूध का नाम आया है कि देख लो, नहीं आया। सप्त धातु तो मांसाहार हम कह सकते क्योंकि वो प्राणिज, ये भी प्राणिज है, लेकिन इसको मांसाहार की कोठी में रखा नहीं गया क्योंकि सप्त धातुओं में इसका नाम नहीं है दूध का। ठीक है ना, दूध का नाम है कि देख लो सप्त धातुओं में, तो सप्त धातुओं में इसका नाम नहीं है तो ये मांसाहार नहीं है। तीर्थंकर भगवंतों ने ये जो उपदेश दिया है रसों का, अगर ये रस तीनों मांसाहार की कोटि में आते तो तीर्थंकर भगवान का उपदेश देना गलत होता। कोई कोई कहते हैं अज्ञान से कि दूध मांसाहार है, उसको क्यों खाते क्यों पीते? जो जो मांसाहार होता है ना वो सप्त धातु की कोटि में आएगा, उसमें से एक होगा, और जो धातुओं में से कोई एक वस्तु है तो उसके भीतर से बदबू आएगी। परंतु दूध से कभी बदबू आ सकती है? इसलिए मांसाहार नहीं है। मांस से बदबू आ सकती, चर्बी से बदबू आ सकती, चर्बी मांसाहार, चर्बी, चर्बी मांसाहार, हड्डी मांसाहार है, मांस भी मांसाहार है, रक्त भी मांसाहार है, शरीर के जो सप्त धातु हैं सब मांसाहार की कोटि में आएंगे, लेकिन दूध मांसाहार की कोटि में नहीं आएगा। तो शाकाहार भी नहीं और मांसाहार भी नहीं दूध, तो कौन सा आहार है ये? तो आहार दो प्रकार के ही हैं, ऐसा मत समझो कि एक मांसाहार और एक शाकाहार दो ही हैं, तो दो में से एक, एक में दो, किसी एक में डाल दो उसको। शाकाहार कहते हो दूध को तो गलत, मांसाहार कहते हैं तो भी गलत। तो दूध कौन सा आहार यहां बताया? देखो रसाहार, ये रस के कोटि में है, रसाहार है ये। जैसे फलों का रस होता है ना, पानियों प्राणियों का भी रस होता है, फल अपने रस देते हैं। नारियल का पेड़ पानी देता है, नारियल का पेड़ पानी देता है, पानी अलग है नारियल अलग है, वो उसका रस है। अनार का रस, मौसम्बी का रस, नींबू का रस, फलों का जैसा रस होता है वैसे प्राणिज पदार्थ जो खाद्य होता है, भक्ष्य होता है, उसको हम मांस की कोटि में नहीं लेते, रसाहार की कोटि में लेते हैं। दूध रसाहार है, दही रसाहार है, तेल नहीं, तेल दही दूध घी, घी तीन चीजें हैं ना, प्राणिज पदार्थ तीन हैं, घी दूध दही, ये तीनों रस की कोटि में। षड्रस में तीन तो दूध घी और दही तीन हो गई है, और तेल मीठा और नमक, तेल तो तेल है वो भी शाकाहार है, शाक से उत्पन्न होता, शाक यानी वनस्पति, वनस्पति से तेल उत्पन्न होता है, मीठा वो भी शाकाहार है, मीठा भी शाकाहार, और नमक शाकाहार है क्या मांसाहार? नमक रसाहार, ये किससे निकला फिर? नमक, नमक किससे निकला? खारा पानी से भी निकलता है और पृथ्वी से भी निकलता, सिंधी लोग लोन कहो नमक कहो, ये दोनों रस ही तो हैं। यहां पर नमक जो कहा है ये नमक की जगह लोन भी कह सकते हैं और नमक भी कह सकते हैं, ये रस की कोटि में आता है, रसाहार है। पर शाकाहार है क्या मांसाहार है? ये दोनों नहीं है, रसाहार। तो उत्पन्न किससे हुआ? लोन, खनिज से उत्पन्न हुआ, खनिज से प्राप्त किया हमने। और ये शाकाहार के जो वस्तुएं हैं ये शाक से यानी पेड़ से वनस्पतियों से प्राप्त हुआ इसलिए शाकाहार कहा। प्राणियों से मिले कोई वस्तु तो प्राणिज है, लेकिन प्राणिज में एक मांसाहार भी है और रसाहार भी। कई लोगों को ये भ्रांति है, कोई प्रश्न पूछता है कि दूध दही आदि मांसाहार है क्या शाकाहार है, ऐसा पूछते हैं वो, जल्दी बताओ। तो कोई कह देता शाकाहार और कोई कह देता मांसाहार, और अपने अपने ढंग से सिद्ध करने के लिए कोशिश करते हैं, ये शाकाहार कहने लगते हैं और वो मांसाहार कहने लगते हैं, और ये दोनों ही कोशिश करना बेकार है। दूध न मांसाहार है न शाकाहार है, वो तो रसाहार है। इन छह प्रकार के रसों का त्याग करना, किस लिए त्याग करना, क्या उद्देश्य, रस क्यों छोड़े? हाँ, इंद्रियों को जीतने के लिए, ध्यान सिद्धि के लिए, इच्छाओं का निरोध करने के लिए। इच्छा निरोधो तपः, बहिरंग ये जो छह तप हैं इनका मूल उद्देश्य एक ही, इच्छा का निरोध हो, ध्यान की सिद्धि हो, परमार्थ की सिद्धि हो, आत्मा का कल्याण हो, कर्म की निर्जरा हो, मोक्ष की प्राप्ति। वो भी खनिज है, खनिज है। ठीक है ना? देखो, गुणवत्ता की अपेक्षा से जो जिसमें गुणवत्ता अधिक है और सात्विक भी है, जिसको खाने से प्रमाद नहीं होता, जिसका प्रयोग करने से बहुत सारे शरीर में सात्विक गुणों की वृद्धि होती है, ऐसा दूध तो गाय का ही माना गया है। और बाकी प्राणियों का जो दूध होता है वो गाय जैसे गुणवत्ता को धारण नहीं करता। हाँ, दूध में स्वर्ण अंश भी है। हाँ? नहीं, वो ठीक है, लेकिन वो जैसे बकरी का दूध है तो औषधि, लेकिन गाय के दूध में वो एकदम पतला है। कौन सा? बकरी का दूध। और गाय का दूध थोड़ा सा फैट अधिक है, लेकिन वह फैट प्रमाद कारक नहीं है, इसलिए गाय के दूध को रोग निवारक शक्ति भी कहा है, औषधि युक्त है गाय का दूध। गाय का घी तो अमृत ही है। भैंस का दूध, भैंस का दही, छाछ वगैरह पी करके आप स्वाध्याय करके लिए करने के लिए बैठो, महाराज क्या क्या बताया महाराज? तो एक नशा चढ़ जाता है उससे, अम्लता यानी फैट अधिक होने से उसमें प्रमाद कारक दोष कारक शक्ति है। किस दूध में? भैंस के दूध में बहुत गरिष्ठ है, पचा नहीं सकते, फैट अधिक है। अधिक फैट हो तो फिर खा करके स्वयं भी फैट बन जाएंगे, हम भी बहुत गाढ़े हैं। दूधों में गाय का दूध, फलों में आम्रफल, रसों में घने का रस, गोरस, रसों में गोरस, घने के रस से बढ़कर की भी शक्ति गोरस। हाँ ये देखो, गोरस शब्द कैसा बना? गो यानी गाय, रस यानी उसके जो तीन पर्याय हैं, दूध दही और दूध दही और घी, तीन तीन पर्याय, ये गोरस पर्याय, ये तीनों गोरस की कोटि में है गोरस। और यह रस गो से उत्पन्न हुआ है इसलिए रसाहार है, मांसाहार भी नहीं और शाकाहार भी नहीं। इन छह रसों में से कुछ का अथवा सभी का त्याग करना रस परित्याग है। शक्ति को देखकर शरीर के लिए तप दिया जाता है, शरीर के लिए नहीं, आत्मा के तप को तपने के लिए इन रसों का परित्याग किया जाता है। इच्छा निरोध मुख्य लक्ष्य है। रसों में इच्छा का अभाव होना ये रस परित्याग है। तो कितना त्याग करना? समय की पाबंदी से करो या जीवन पर्यंत करो, एक रस, दो रस, तीन रस या छह रस, जितना त्याग कर सके, जितने समय के लिए कर सके उतने समय के लिए करना चाहिए। पांचवा, विविक्त शय्यासन तप, ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय, ध्यान आदि की सिद्धि के लिए एकांत स्थान में शयन करना, आसन लगाना, ये विविक्त शय्यासन तप है। किसकी सिद्धि के लिए? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ने क्या? ब्रह्म में, आत्मा में रमन करने के संस्कार बढ़ जाएं और आत्मसिद्धि हो, ऐसे ब्रह्मचर्य, आत्मसिद्धि, आत्मध्यान, उसमें तल्लीनता, उसमें एकाग्रता होने के लिए प्रयत्न करना, ये विविक्त शय्यासन तप एक माध्यम है बहिरंग। एकांत में सोना, एकांत में रहना, तो एकांत में अकेले में आप रहेंगे तो धर्म ध्यान बहुत अच्छी तरह से होगा, आत्म ध्यान बहुत अच्छी तरह से होगा और आर्त रौद्र ध्यान नहीं होगा। इधर उधर की बातें ध्यान में नहीं आएंगी और सबके बीच में है तो कुछ ना कुछ चलता रहता, सबके बीच में है तो कुछ ना कुछ चलता रहता, वो कुछ कहेंगे और हम भी कुछ याद करके फिर डबल सुनाएंगे और फिर उसके उपरांत वो भी जरा सुनाएगा, फिर ऐसा चलता चलता हमारा समय पूरा दिन का चला जाता है। तो क्या कहा है? विविक्त शय्यासन, एकांत में रहना। किसके लिए रहना? आत्म ध्यान की सिद्धि के लिए, यही ब्रह्मचर्य है। आत्म ध्यान करने के संस्कार बढ़ते बढ़ते आत्मा आत्मा में स्थिर हो जाए, उसकी सिद्धि के लिए और स्वाध्याय के लिए, सबके बीच में बैठ करके स्वाध्याय नहीं हो पाता क्योंकि एकाग्रता नहीं आती। एकाग्रता कब बढ़ेगा, कैसा बढ़ेगा? एकाग्रता बढ़ेगी एकांत में बैठने से। स्वाध्याय की सिद्धि के लिए विविक्त शयासन, यानी स्वाध्याय करते समय एकांत, ध्यान करते समय एकांत, इस प्रकार से एकांत स्थान में शयन करना, आसन लगाना, कोई भी आसन, खड्गासन, पद्मासन इत्यादि जो आसन है उनको लगाना, ये विविक्त शयासन तप है। एकांत में भी बैठे हैं लेकिन एक आसन पर बैठे, विविक्त यानी एकांत, निर्जन, कोई संबंध नहीं, जहां पर शांति है, कलह नहीं, वहां पर ऐसा निर्जन स्थान में रहना। काय क्लेश, शरीर से ममत्व त्याग करके अनेक प्रकार के कष्टप्रद योग धारण करना काय क्लेश है। एक लाइक क्लेश तप अंतिम तप है बाह्य तप में, इसमें असंख्यात गुणित निर्जरा, पूर्व पूर्व के तप की अपेक्षा से उत्तर उत्तर तपों में असंख्यात गुणित निर्जरा अधिक बताई गई है। अंतिम यह तप काय क्लेश है, काय यानी शरीर, क्लेश यानी कष्ट, शरीर को कष्ट होने लायक कोई क्या करना, आसन लगाना, आतप यानी धूप, धूप भी ठंडी है, धूप है, अपनी शरीर की क्षमता को देखकर करने के लिए प्रेरणा दी है, क्योंकि उत्तर गुण है, उत्तर गुण कर्म निर्जरा के लिए विशिष्ट सहायक होते हैं, मूल गुण की रक्षा करते हुए संयम का भंग न करें, क्योंकि संयम ही अपना मूल गुण है, मूल गुण की रक्षा करते हुए उत्तर गुणों की आराधना करें, कैसा करें, शक्तितस त्याग तपसी, शक्ति के अनुसार त्याग और शक्ति के अनुसार तप, कष्ट आदि को, क्लेश आदि को ग्रहण करना, ये काय क्लेश तप है। मार्गात चवन निर्जरार्थम परिशोड़व्यः परिशः, तत्वार सूत्र में कहा है ना, मार्गात अचवन, मार्ग यानी रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग, रत्नत्रय का मार्ग, रत्नत्रय मार्ग से च्युत न होते हुए गिरना नहीं तप करते समय, और तप के माध्यम से ही गिर गए तो मूल से गिर गए, रत्नत्रय अपना मूल है, इस मूल व्रतों से गिरना नहीं, इसकी रक्षा करते हुए शक्ति के अनुसार बहिरंग तप आदि को ग्रहण करना, ये क्या है, शक्ति के अनुसार किया जाने वाला काय क्लेश आदि तप है या परिशय है, ये कह सकते हैं। शरीर से ममत्व त्याग कर अनेक प्रकार के कष्टप्रद योग धारण करना, योग यानी शरीर के माध्यम से कोई आसन वगैरह, एक ही आसन पर बैठना धूप में या ठंड इत्यादि में बैठ करके शरीर कष्ट होने लायक तपस्या करना, अनशन ऊनो दर करे व्रत संख्या रस छोर, विविक्त शयन आसन धरे काय क्लेश सुठोर, इसमें 12 प्रकार के, 6 प्रकार के बहिरंग तपों का उल्लेख किया है। अंतरंग तप किसे कहते हैं एवं कितने प्रकार के होते हैं, जिसका संबंध मनोनिग्रह से होता है, एवं अंतरंग तप आत्मशुद्धि के लिए किए जाते हैं, ऐसे अंतरंग तप 6 प्रकार के होते हैं जिसका संबंध मनोनिग्रह से है। अंतरंग तप मनोनिग्रह के लिए, मनोनिग्रह मन को वश में करने के लिए, बहिरंग तप इच्छा निरोध के लिए, इच्छा पर वस्तुओं को देखकर पर वस्तुओं में उत्पन्न होती है, ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, ये चाहिए। वस्तुओं को देख देख करके मन उनकी चाह में रहने लगता है। उस चाह को निरोध करने के लिए वस्तु का त्याग, उन वस्तुओं से दूर रहना, उसको त्याग करना, ये बहिरंग तप की कोटि में आया। अब इच्छा निरोध के लिए ही यदि बहिरंग तप अपनाया है तो इच्छा का निरोध हो गया तो मनोनिग्रह तो स्वतः हो गया, क्या अलग से निग्रह करना पड़ेगा? नहीं। इच्छा किधर से उत्पन्न होती है, कहां से उत्पन्न होती है? अंतरंग से। और मन कहां है? वो भी अंतरंग में। इच्छा करते समय मन को साथ लेकर के हम इच्छा कर रहे हैं, मन हमारा इच्छाओं से घिरा हुआ होता है और वह दौड़ लगाता है। क्या करना? मन दौड़े, जहां जाता है वहां चला जाए, कोई दिक्कत नहीं, उसको रोको मत, रोको मत, जाने दो, मन को रोको मत, उसको जाने दो, जहां जाता है वहां जाने दो, लेकिन उसका ऑपरेशन करके छोड़ दो। राग द्वेष ने इच्छा का निरोध करके उस मन को जहां विचार करना चाहता है, जो कैसा भी वो रहना चाहता है, रहने दो, जाने दो, उसको विचार करने दो, लेकिन क्या ना हो मन के भीतर, इच्छा ना हो, मन के साथ इच्छा ना हो। इच्छा का निरोध करके मन को कहीं भी छोड़ दो, वो ध्यान की कोटि में ही आता है। मनोनिग्रह के लिए है ये बहिरंग अंतरंग के छह तप, मनोनिग्रह के लिए। मनोनिग्रह क्या चीज है? मन में रहने वाली इच्छा का निरोध करना मनोनिग्रह है। मन में रहने वाली इच्छा का निरोध करना मनोनिग्रह है। क्या मन को निकाल डालना? भीतर मन है, उसको तरोड़ मड़ करके बाहर फेंक दो? फेंक भी नहीं सकते। उसको किसी से बांध करके रखो, बांध भी नहीं सकते। मन को आज तक किसी ने बांध नहीं पाया। मन को समीचीन दिशा में प्रवाहित कर सकते हैं। जो गलत दिशा में काम कर रहा है, उस काम को छुड़ाकर समीचीन दिशा में हम योग्य काम दे सकते हैं, उसके लिए योग्य काम दे सकते हैं और कर भी लेगा। योग्य काम करके छोड़ दिया तो वह धर्म ध्यान करेगा, और ये नहीं करेंगे तो आर्त रौद्र ध्यान करेगा। तो इसी आर्त रौद्र ध्यान को छुड़ाने के लिए इच्छा का निरोध है, और इच्छा निरोध होने पर मन का शुद्धिकरण होता है, और शुद्ध मन कभी भी आर्त ध्यान रौद्र ध्यान नहीं कर सकता। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान न करने वाला मन धर्म ध्यान में स्थिर हो जाता है, और कहीं भी कितना भी दौड़ता है तो धर्म ध्यान के साथ ही दौड़ता है। और ऐसा धर्म ध्यान में ही दत्त चित्त रहने वाला चित्त मन हमेशा कर्म की निर्जरा करेगा क्या? बंद करेगा, निर्जरा करेगा, निर्जरा करता है। ऐसे निर्जरा का साधन मन, इस मन का केवल अपने को ऑपरेशन करके उसको छोड़ना, मन का ऑपरेशन निग्रह। अंतरंग तप छह प्रकार के हैं। प्रायश्चित पहले नंबर का है, अपने किए गए अपराधों को दूर करना प्रायश्चित है। हमसे बहुत सारे अपराध होते हैं, यदि अपन ने व्रत लिया है या नहीं भी लिया है, अपराध तो हो ही सकते हैं, होते ही हैं। तो कौन से अपराध? व्रतों में लगने वाले दोष को भी अपराध कहा। हमने किसी जीव को कष्ट, दुख दिया, कष्ट दिया, वो भी अपराध। चलते फिरते, उठते बैठते, सोचते विचार करते, मन वचन काय की प्रवृत्ति से हम जो कुछ भी करते रहते हैं, उसमें पाप का बंध के कारणीभूत जो भी चेष्टाएं हैं, वो सब अपराध की कोटि में है। जिस जिस से हमको पाप कर्म का बंध हुआ है, वो कार्य सभी अपराध की कोटि में आता है। और यदि कर्म का बंध हुआ है, अपराध हुआ है, तो उसके लिए, उसको धोने के लिए कोई मार्ग है क्या? नहीं, मार्ग अवश्य है। बड़ा सा बड़ा अपराध हो या छोटा सा छोटा अपराध हो, दोनों से निवृत्त होने के लिए अवश्य मार्ग होता है, उपाय होता है। उस उपाय के माध्यम से हम मुक्त हो सकते हैं अपराध से। कैसे? जैसे मान लो चलते चलते हमारे पांव के नीचे एक चींटी आई और दब गई, अपराध हुआ? छोटा है क्या? बड़ा है ये, त्रस जीव का घात है, बड़ा ही तो है, बड़ा अपराध हो गया। क्या करेंगे आप? मर गया है, मरने दो। क्या करेंगे आप? जाना, आगे चलना, मर तो गया, क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं, पश्चाताप भाव होना चाहिए कि नहीं? ये पश्चाताप सर्वप्रथम आत्म शुद्धिकरण का उपाय है, पश्चाताप। पश्चाताप भाव के बिना प्रायश्चित के परिणाम नहीं होंगे। मुझे दंड लेना चाहिए, मुझे अपराधों को दूर कर लेना चाहिए। दंड स्वीकार करने वाला व्यक्ति वो नियम से अंतरंग में पश्चाताप वाला होता ही है। इसको कहते हैं आत्मनिंदा। आत्मनिंदा, ग्रहा, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग, ये छह माध्यम हैं अपराधों को धोने के लिए। कौन कौन से? बहुत अच्छे छह, ध्यान रखो। आत्मनिंदा, ग्रहा, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग दंड की कोटि में आता है। कायोत्सर्ग दंड है। आलोचना आत्मनिंदा, आत्मनिंदा, ग्रहा, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग। आत्मनिंदा सर्वप्रथम, मन में विचार आना ही चाहिए, मैंने गलत किया है, ये विचार आना आत्मनिंदा है। मैंने गलत किया है, ये विचार आ गया तो आत्मनिंदा हो गई। राजी तो हो गया वो अपराध को स्वीकार करने के लिए, और अपराध ही स्वीकार नहीं करता है तो आत्मनिंदा नहीं होगी। गरहा, और जो आत्मनिंदा कर चुके हैं उसको गुरु के सामने जाकर के दोषों को कहना, कहने के जो भाव आते हैं कि गुरु के सामने जाकर के कहें और इस अपराध से, दोष से मुक्त हो जाएं हम, इस प्रकार विचार आने पर आप अपने तक सीमित नहीं रहते, गुरु के सामने चले जाते हैं या भगवान के सामने चले जाते हैं। वहाँ पर आत्मनिंदा करते हुए भगवान से उन वचनों को व्यक्त करते हैं, उन अपराधों को व्यक्त करते हैं, ये भगवान आप निर्दोषी और हम दोषी, इस दोष से मुक्त होने के लिए आपके चरणों में आ गए, हमको दोष से मुक्त कराओ, ये कहते हुए भगवान से हम ग्रहा करते हैं। ग्रहा गुरु के सामने होता है। भगवान के सामने करेंगे तो भगवान तो प्रायश्चित देंगे नहीं, भगवान कभी किसी को प्रायश्चित देते नहीं है। प्रायश्चित कौन दे सकते हैं? गुरु दे सकते हैं। मार्गदर्शन कौन दे सकते हैं? गुरु। गुरु की बहुत भूमिका ऊंची होती है शिष्य के लिए, भगवान से ज्यादा। भगवान के सामने कुछ भी कहो, प्रायश्चित भी मांगो तो भगवान चुपचाप बैठ जाते हैं, तुमने कर लिया, मैं क्या करूं। लेकिन गुरु ऐसे नहीं कहेंगे, क्या कर दिया, ऐसा पूछेंगे, ऐसा ऐसा हो गया तो ठीक, हाँ इसलिए आया हूँ, प्रायश्चित लेना चाहता हूँ। तो गुरु क्या करते हैं? हाँ ये कर लो, इतना कायोत्सर्ग कर लो, कायोत्सर्ग अंतिम दंड। आत्मनिंदा, ग्रहा, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग ने जप आदि करने के लिए बता देते हैं, अथवा उपास आदि तप भी देते हैं। जप देंगे या तो तप देंगे, तो दोनों दंड की कोटि में आते हैं, ये दंड है। हाँ? गुरु न हो तो गुरु को साक्षी बनाकर मन में उन दोषों का ग्रहण करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। किसमें आगे? आत्मनिंदा हो गई, ग्रहण आलोचना की हो, आलोचना। आलोचना क्या चीज है? सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ भी हमने क्रियाएं की है और प्रत्येक क्रिया में जो कुछ भी गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को, मैंने गलती किया है उनको स्मरण करना, गलतियों को स्मरण करके उनको गिनना कि इतना इतना किया है, यहाँ भी हुआ है, वहां भी हुआ, ये आलोचना हो गई। आलोचना, मन में आलोचना भी होना चाहिए। आलोचना के पश्चात प्रतिक्रमण, आलोचना पूर्वक ही प्रतिक्रमण होता है दोषों को याद करते करते। हे भगवान, ये दोष मेरे दुख, ये दोष मेरे दूर हों, इसके माध्यम से मेरे लिए जो अशुभ कर्मों का बंद हुआ है, हुआ हो, उन सब का निवारण हो, वे पाप कर्म मेरे मिथ्या हों, तस्मिच्छा में दुखड़म, वे पाप कर्म मेरे से मिथ्या हों। इस प्रकार से मिथ्या हूं कहना ये प्रतिक्रमण हुआ। दोष बाहर प्रवृत्ति में, प्रवृत्ति के काल में होते, और प्रवृत्ति में जो कुछ भी दोष होते हैं उनकी आलोचना, आत्मनिंदा, ग्रह, आलोचना करते हुए वो लौटता है अंतरंग की ओर संशोधन के लिए, आत्म संशोधन करने के लिए लौटता है। ये लौट कर अपने आत्म शुद्धिकरण करने का जो उपाय है वही प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण, क्रमण यानी आना, प्रति यानी लौट कर आत्मा की ओर, आत्म संशोधन के लिए अंतरंग में आ जाने का नाम प्रतिक्रमण है। ये प्रतिक्रमण वृत्ति करता है, अवृत्ति सामान्य रूप से वो भी करता है। अभी प्रतिक्रमण पुस्तक दिया है ना सबको, उसको पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? पढ़ रहे हैं। रोज कम से कम एक बार पढ़ो उसको, एक साल तक रोज कितना, आध घंटा लगता है, आध घंटे में पूरा प्रतिक्रमण हो जाता है। और उसमें चतुर्थ गुणस्थान के लायक प्रतिक्रमण है, चौथे गुणस्थान के लायक, आठ मूल गुणों का और सम्यक दर्शन आदि का, और चलते फिरते, व्यापार करते, उद्योग करते, सांसारिक आरंभ सारंभ आदि क्रियाओं को करते समय जो जो हमारी प्रवृत्ति में दोष लगते हैं उन सब का है, उसको पढ़ना चाहिए। चौथे गुणस्थान में यदि हैं आप तो उसका अवश्य प्रयोग करना चाहिए। प्रतिमाधारियों का प्रतिक्रमण नहीं है वो, चतुर्थ गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि का प्रतिक्रमण है वो, और प्रतिमाधारियों का प्रतिक्रमण भी अलग से है, उसको कर सकते हैं। वो श्रावक प्रतिक्रमण है, वो धर्म ध्यान दीपक में, ये दार्शनिक है। दार्शनिक ने सम्यक दृष्टि, दार्शनिक, हाँ, दार्शनिक व्यक्ति, दार्शनिक लोग रहते हैं ना, ईर्ष्यापद, ईर्ष्यापद प्रतिक्रमण अलग है। पूजांजलि में जो प्रतिक्रमण है वह भी चतुर्थ गुणस्थान वर्ती का ही है। हाँ, अलग अलग है सभी। अभी जो दिया है ना पुस्तक दश लक्षण में, उसमें परिपूर्णता है। कोई भी मतलब दिन भर जो हम कुछ करते हैं उस सब का है। पढ़ करके देखा है कि नहीं, उसमें कैसे कैसे क्या क्या लिखा है। एक विद्यार्थी से लेकर बड़े तक जो भी दोष करते हैं या होते हैं उन सब का प्रतिक्रमण उसमें है। उसको एक साल तक अवश्य पढ़ना, और इसको पढ़ने के बाद आपको महसूस होगा कि हम किस किस प्रकार से दोष करते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या दोष लगता है, ये कम से कम ज्ञात होगा, पता चलेगा। प्रतिमाधारियों को श्रावक प्रतिक्रमण है, वो धर्म ज्ञान दीपक में प्राकृत भाषा में, हिंदी भाषा में भी हो गया है, उसको पढ़ सकते हैं। हाँ, शावक जिसकी दो प्रतिमा है तो दो ही प्रतिमा का उनको प्रतिक्रमण करना चाहिए। वैसे तो श्रावक प्रतिक्रमण में 11 प्रतिमाओं का प्रतिक्रमण है, किंतु जिसको दो प्रतिमा है दो प्रतिमा संबंधित प्रतिक्रमण करता है, तीन हो तो तीन संबंधित करता है, चार हो तो चार संबंधित, 11 हो तो सब करता है, जितने हैं उतने। प्रायश्चित क्या बता रहे थे? आत्मनिंदा, ग्रहा, आलोचना, प्रतिक्रमण। अब प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण करने के बाद यदि प्रत्याख्यान नहीं करते तो दोषों का होना रुकता नहीं, करना चाहिए प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान यानी क्या करना चाहिए, ये जो दोष आज हुए हैं मैं अब कभी नहीं करूंगा। कुछ दोष ऐसे होते हैं प्रतिनित्य होते हैं, और कुछ दोष ऐसे होते हैं होना नहीं चाहिए था और आज ही हो गया और भविष्य में कभी नहीं होगा, करेंगे तो होगा नहीं करेंगे तो नहीं होगा, ऐसे दोष भी रहते हैं। तो उन दोषों का क्या करना, उन दोषों का प्रत्याख्यान करना चाहिए। कैसा प्रत्याख्यान, कल के दिन ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, इस प्रकार संकल्प लेने का नाम प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान यानी त्याग, दोष होने के लिए प्रतिबंध लगाना, यानी त्याग करना, दोष नहीं लगाऊंगा ऐसा संकल्प करना, ये प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान के बाद काय सर, प्रत्याख्यान कर लिया दोष नहीं करूंगा, लेकिन अब होता है कि अब जो कर चुका हूं दोष उसके लिए क्या करूं, ये भी क्या करना चाहिए, ये भी प्रश्न मन में उठता है, तो उसके लिए जाप दे देना चाहिए। प्रतिक्रमण करके 108 बार जाप कर लो, हो गया, ये कायोत्सर्ग हो गया। इसी को कहते हैं प्रायश्चित, दंड स्वीकार करना, कायोत्सर्ग स्वीकार करना, या उपवास, एकासन, रस परित्याग आदि के माध्यम से प्रायश्चित लेना, ये दंड प्रायश्चित है। दूसरा है विनय, पूज्य पुरुषों एवं मोक्ष के साधनों के प्रति आदर का भाव होना विनय है। विनय किसके प्रति? विनय पूज्य पुरुष यानी कौन, रत्नत्रय के धारी गुरु, पूज्य पुरुषों के प्रति विनय करना, आदर आदर रखना, मोक्ष के साधनों के प्रति, पूज्य पुरुषों के प्रति भी और मोक्ष के साधनों के प्रति। यानी मोक्ष के साधन कौन है? नहीं, मोक्ष का साधन हमारा सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये मोक्ष का साधन है। इस साधन के प्रति आदर भाव, सम्यक दर्शन कहते ही घबराना नहीं चाहिए, ये आदर भाव, और घबराया तो अनादर है। क्यों? वो उससे हम डरते हैं, क्यों? उसमें मिथ्यात्व छोड़ना पड़ता है, तो मिथ्यात्व से जिसको राग हो गया हो तो वह सम्यक्त्व से डरने लगता, तो ये अनादर होता है। किसके प्रति अनादर हुआ? सम्यक दर्शन के प्रति अनादर, और आदर किसके प्रति हुआ? मिथ्यात्व के प्रति आदर हुआ, तो आत्मा का कल्याण कैसे होगा? नहीं होगा। ये विनय किससे करना? पूज्य पुरुषों के प्रति और मोक्ष के साधनों के प्रति आदर रखना। वैयावृत्ति तप तीसरा अंतरंग तप है, गुणों के अनुराग पूर्वक संयमी जनों की सेवा करना वैयावृत्ति है। संयमी रत्नत्रय के धारी, उनके प्रति वैयावृत्ति आदि जो हम करते हैं वो किस कोटि में आता है? अंतरंग तप की कोटि में आता है, ये अंतरंग तप है वैयावृत्ति करना, और वैयावृत्ति भी अंतरंग तप की कोटि में तभी आएगा जब उस वैयावृत्ति के माध्यम से हम अपने आत्म कर्म निर्जरा का उद्देश्य रखते हैं, तब तो अंतरंग तप। नहीं तो मैं इतना वयावृत्ति करता हूँ, सेवा करता हूँ, इसको बतलाने के लिए, ख्याति के लिए, पूजा के लिए, लाभ के लिए वयावृत्ति हो तो वह अंतरंग तप की कोटि में नहीं आता। स्वाध्याय चौथा अंतरंग तप है। प्रमाद का त्याग कर ज्ञान की आराधना करना स्व को पाना स्वाध्याय है। स्वाध्याय का स्व यानी स्वयं, अध्याय अधि यानी आना, स्वयं के प्रति आना, अय यानी आना, अधि यानी निकट, स्व अधि अय स्वाध्याय, स्व का अध्ययन करना, प्रमाद त्याग करके ज्ञान की आराधना करना, ये स्वाध्याय कहलाता है। इसके माध्यम जिसके माध्यम से हम स्वयं को उपलब्ध होते हैं। पांचवा है कायोत्सर्ग, शरीर के प्रति अहंकार ममकार आदि का त्याग करना कायोत्सर्ग है। शरीर के प्रति बहुत ममकार होता है, कभी अहंकार भी होता है, ऐसा अज्ञान दशा में हमारा अनादिकाल चला गया है। अहंकार ममकार, अहंकार ममकार शरीर के प्रति करते करते समय नष्ट हो गया। अब क्या करना? अंतरंग तप करना। कौन सा अंतरंग तप? कायोत्सर्ग, शरीर के प्रति ममकार छोड़ करके कायोत्सर्ग, यानी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने को कायोत्सर्ग बोला जाता है। यानी कि 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने के लिए जितना समय लगता है, उतने समय के लिए शरीर का ममत्वादि का त्याग करके जाप में डूबना, पंच परमेष्ठियों के नमोकार मंत्र के जाप में डूब जाना, शरीर का ममत्व त्याग करके, इसको कहते हैं कायोत्सर्ग। काय यानि शरीर, उत्सर्ग यानि त्याग, शरीर के ममता को त्याग करके पंच परमेष्ठियों के नाम स्मरण में रहना, ये कायोत्सर्ग। छठा है ध्यान, मन को किसी एक विषय पर एकाग्र करना ध्यान। एक विषय पर मन को टिका दिया, टिकाने से पहले मन का ऑपरेशन आवश्यक है, उसमें से जो जो इच्छा है उसको बाहर निकाल दो और मन को किसी एक में टिका दो, इसका नाम धर्म ध्यान है। ऐसा धर्म ध्यान असंख्यात गुणित कर्म निर्जरा के लिए कारण बनता है और वही धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान की सिद्धि का उपाय है। वही शुक्ल ध्यान केवल ज्ञान की प्राप्ति का साधन है और वही केवल ज्ञान होने के पश्चात पुनः जब हम शुक्ल ध्यान का अवलंबन लेकर के उस ध्यान के माध्यम से समस्त कर्मों का नाश करते हैं तो वह ध्यान हमारे लिए निर्वाण की प्राप्ति का कारण बनता है। इस प्रकार 12 प्रकार के जो तप होते हैं, आचार्य परमेष्ठी इन तपों में लीन रहते हैं और ये लीन रहना उनके लिए आवश्यक होता है, इसलिए मूल गुण के रूप में उनको बताया गया है। आगे अपन धर्म ध्यान किसे कहते हैं, धर्म ध्यान के कितने भेद हैं, ये सब समझेंगे। 10 धर्मों का वर्णन कल के दिन देखें। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी जयवंतो मा जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरुमा अब तक हम विषयांद रहे, अब ना हम विषयांद रहे।